Today's Our Noble Lineage will be presented in Hindi with subtitle in Arabic, Olexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. उदय के समय से मानवता को ईश्वर द्वारा धरती पर परोपकारी और करुणामय शासक और उसके निवासी होने के लिए आदेशित किया गया था। उन्होंने हमें प्रचुरता में सभी फलदारी बीज प्रदान किए जो पूर्णतः धरती की सतह पर होते हैं, और सभी पेड़ जिसमें फलदायी बीज हैं वह हमारा भोजन होगा। हमें अपनी भूमिका में अपने बच्चों के पालक और अपने जीवन ग्रह के प्रबंधक के रूप में मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने बहुत से आत्मज्ञानी गुरुओं, बुद्धिमान व्यक्तियों और पैगम्बरों को युगों से हमें अपने विवेकवान विरासत की याद दिलाने के लिए धरती पर नीचे भेजा। धरती पर अपने काल के दौरान ये आत्मज्ञानी जीवों ने भगवान श्री कृष्ण, पैगंबर मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, शाकेमुनि बुद्ध, लाओजू, गुरु नानक, योगानंद और भी बहुत से हमारे साथ सर्वोत्तम अधिकांशतः जीने का विवेकवान तरीका बांटा। अपने महान प्रेम और करुणा से उन्होंने स्पष्टतः अनुभव किया और समझा कि पशु ईश्वर के मूल्यवान प्राणी है और उनका आदर और रक्षण हो। इस प्रकार इन सभी ने स्पष्ट पूर्वक निर्देश दिया है कि उनके अनुयायी जो शाकाहारी आहार वह जो पशु मुक्त होता है केवल वह है जो मानवता के उपयुक्त होता है, जैसा ईश्वर ने समय के प्रारंभ से आदेशित किया है। इस कार्यक्रम में हमारी विवेकवान वंशावली हम आज जगत में विद्यमान धार्मिक समूहों, आध्यात्मिक संगठनों और समुदायों के मूल का परीक्षण करेंगे। अच्छे हृदय वाले दर्शकों का सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर स्वागत है। हम शाकाहारी लोगों के एक आश्चर्यजनक समूह का भ्रमण करने के लिए भारत के मरुस्थल का दौरा करें जिनको कुछ के द्वारा जगत का पहला पर्यावरण आदि समझा जाता है। वे विश्नोई पंत के अनुयायी राजस्थान भारत में थार मरुस्थल के नेक निवासी हैं। महात्मा गांधी ने कहा, एक देश और उसकी नैतिक प्रगति की महानता उस तरीके से निर्धारित की जा सकती है जैसे उसके पशुओं से व्यवहार होता है। आज जैसा कि हम संपूर्ण जगत की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं यह स्पष्ट है कि वह सत्य है। प्रशंसनीय समाज वे हैं जो मानव, वनस्पति और पशु सहित सभी जीवों के प्रति दयालु और निष्पक्ष है, जो कठिनाई के समय समृद्ध होते हैं और अपने जीवन में महान संतोष और खुशी पा सकते हैं, और यह भारत के दयालु विष्णुई के लिए निश्चित रूप से सत्य है जो अपने पर्यावरण में 500 वर्षों से अधिक से शांतिपूर्वक रह रहे हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल के बीच में एक बंजर और उजाड़ भूमि है, वहाँ हरियाली के कुछ नगण्य भंडार है। यहाँ पेड़ गौरव से बढ़ते हैं और छोटी पत्तियों के साथ वे पशुओं के चारागाह के लिए घर प्रदान करते हैं। जंगली मृग और चिंकारा माने हिरण गाँव की व्यवस्था में मुक्तता पूर्वक घूमता है। वह भोजन प्राप्त करता है जो बिश्नोई द्वारा प्रेम से प्रदान किया जाता है और कभी कभी बच्चों के साथ खेलता भी है। यह एक दृश्य है जिसे बहुत से लोग आज के समाजों में कम ही देखते हैं, लेकिन यह बिश्नोई गांव व्यवस्था में आम जगह है। बिश्नोई पंथ जम्बेश्वर भगवान द्वारा 500 से अधिक वर्ष पूर्व राजस्थान भारत में स्थापित किया गया था। तब से उन्होंने भारत के पार प्रसारित किया और खुद के लिए जगत में सबसे अधिक पर्यावरणवादी समूह होने की उपाधि अर्जित की। वे भारत में पर्यावरणवाद के अग्रदूत होने के तरह समझे जाते हैं। यद्यपि शुष्क और गर्म मरुस्थल में रहना एक ऐसा पर्यावरण जो उनको बहुत अल्प प्रदान करता है, बिश्नोई हमेशा अपने सहनिवासियों के साथ बांटने की इच्छा रखते हैं। वे उदारतापूर्वक अपने स्नेहमय जल आपूर्ति को बीजों और दानों के साथ जंगली पशुओं और पक्षियों को प्रदान करते हैं जो उसमें और उनके समुदाय के चारों ओर रहते हैं। वे सभी पशुओं के विवेकी गुणों को पहचानते हैं, उनकी ऐसे देखभाल करते हैं जैसे वे उनके मित्र हों या उनके खुद के बच्चे हों। ये निस्वार्थ शाकाहारी लोग न केवल पशुओं को सर्वोच्च सम्मान अदा करते हैं बल्कि वनस्पतियों, विशेषकर पेड़ों को भी करते हैं। वे भंगुर मरुस्थल से कोई जीवित पेड़ नहीं काटते हैं और यह संपूर्ण सृष्टि के उस निस्वार्थ प्रेम और इकबाल के कारण है जिससे विष्णु न केवल उष्ण वातावरण को सहन करते हैं बल्कि थार मरुस्थल को फैलाते भी है जब दूसरे नहीं कर सकते। 1988 में जब थार मरुस्थल गंभीर सूखे से पीड़ित था वैज्ञानिकों ने देखा कि विष्णुई समुदाय उसी प्रकार के संकटीय प्रभावों से पीड़ित नहीं था जैसे अधिकांशतः दूसरे समुदाय पीड़ित थे। इसके अलावा वे अभी भी पशुओं को भोजन और जल प्रदान करने में सक्षम थे। यह इतना अस्वाभाविक था कि सैकड़ों परिस्थितिविदों ने विष्णुई के जीवन के तरीके के अध्ययन के लिए मरुस्थल का दौरा किया। उन्होंने दक्ष और अति सावधानी पूर्वक तरीकों का निरीक्षण किया जिसमें लोगों ने जल आपूर्ति को संग्रह और प्रबंध किया साथ ही फसलों के उनके सावधानी पूर्वक चयन को। पर्यावरण के साथ समरसता में जीवन के सैकड़ों वर्षों से केवल वह लेते हैं जो प्रदान किया गया था और बदले में वह प्रदान करते हैं जो उनके पास होता है। ये लोग मरुस्थल के जीने की पूर्ण समानता को पाते हुए प्रतीत हुए। विज्ञान ने भी उद्घाटित किया है कि केवल 2000 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र मरुस्थल नहीं था बल्कि बदले में घने वर्षा वनों से ढंका था। वैश्विक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र में वर्षा में कमी लाई है लेकिन शायद हमारी मानवीय गतिविधि थार मरुस्थल जैसे इस मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में मुख्य कारण है। जैसे हम इस नाजुक परिस्थिति की तंत्र से पेड़ों को काटते हैं क्षेत्र वर्षा को आकर्षित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। पेड़ों की जड़ जो भूमि की सतह को स्थायित्व प्रदान करती है और मूल्यवान ऊपरी भित्ति को जगह पर पकड़े रहती है लंबे समय तक अपना कार्य नहीं कर सकती है। क्यों ही पेड़ हटाए जाते हैं वर्षा और हवा इस जीवनदायी मिट्टी को पलक झपकते बहा देती है। ये इस कारण के लिए है कि थार मरुस्थल यह ग्रह पर गंभीर मौसम के साथ सबसे बंजर क्षेत्रों में से एक है। तापमान सबसे गर्म महीने मई और जून में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धूल की आंधी जो देश में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है अनवरत भूदृश्य को पुनः आकार देती है। वर्ष के 10 महीने सितंबर से जून तक वार्षिक वर्षा का केवल 10% होता है और वर्षा का दूसरा 90% शेष 2 महीने में धरती को स्पर्श करता है। विष्णुई पंथ कैसे अस्तित्व में आया इसके आधारभूत सिद्धांत क्या थे हम पता करें जब हम इस संक्षिप्त संदेश के बाद वापस आते हैं। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन के साथ बने रहे। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर पुनः स्वागत है। हम खोजें कि कैसे विष्णुई पंथ स्थापित हुआ था और मार्गदर्शक सिद्धांतों को खोजें जो उनके समुदायों को एक दूसरे और पर्यावरण के साथ समरसता पूर्वक रहने में सहायता करता है। वह था कि इस कठोरतम जलवायु में विष्णुई पंथ के संस्थापक जम्भेश्वर भगवान जम्बोजी के रूप में प्रसिद्ध पैदा हुए। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोपालक के रूप में कार्य आरंभ किया। गायों को चराने जंगल में ले जाते। उन्होंने इस कार्य का 27 वर्ष तक आनंद लिया और मरुस्थल के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने निकटता से लोगों पशुओं और साकार पद्धति का निरीक्षण किया। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का भी निर्माण किया। 1476 में जब जम्बी जी 25 के थे एक गंभीर सूखा उनके क्षेत्र के व्यापक विनाश का कारण बना। बहुत से लोगों ने आशा छोड़ दी और चले गए लेकिन जम्बी जी बने रहे कम भाग्यवानों साथ ही साथ पशुओं और पेड़ों की भी सहायता के लिए दृढ़ रहे। इस समय के दौरान जब वे बालू की दून में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे उनको एक दृष्टि मिली जिसमें उन्होंने एक सार्वभौमिक सत्य को समझा। केवल मानव और प्रकृति का एक सम्मानपूर्ण सह अस्तित्व दीनता और विषदा से बचा सकता है। यह कहा गया है कि यह वह क्षण था जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। जब सूखे की स्थिति में सुधार हुआ जम्बो जी ने लोगों को संगठित किया और वृक्षारोपण में नेतृत्व किया। उन्होंने उनको ईश्वर और प्रकृति के प्रति समर्पित रहने साथी जीवों के प्रति उनकी करुणा को भी याद दिलाया। पशु और पेड़ दोनों के लिए यह सुरक्षा और सम्मान मानव और प्रकृति के बीच एक अद्भुत सहजीवन की ओर ले गया जिससे आगामी वर्षों में विष्णुई समुदायों अमित रूप से लाभान्वित होगा। जम्बो जी ने 29 सिद्धांतों की एक रूपरेखा बनाई जिसके द्वारा उन्होंने लोगों को उनके जीवन जीने की सलाह दी। यह है कैसे विष्णुई धर्म ने अपना नाम प्राप्त किया। 20 तात्पर्य 20 और 9 तात्पर्य 9 एक बार उनका समुदाय पुनर्स्थापित और समृद्ध हुआ। जम्बो जी ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए भारत का भ्रमण किया। उन्होंने अगले 51 वर्षों तक अपनी यात्रा को जारी रखा। अपने पथ में सभी जगह सुंदर पेड़ों के कुंज का निर्माण करते, जिनमें से कुछ आज भी पुष्पित हो रहे हैं। एक उदाहरण है रोतु में खेजरी बगीचा। अपनी शिक्षा में जम्बो जी ने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी पक्षों के बारे में कहा, जो उनके आंतरिक ज्ञान से उनको स्पष्ट हुआ था, और अनगिनत महान धर्मों के अध्ययन द्वारा सभी की विवेकवान शिक्षा को एकत्रित करने में सक्षम थे वे, जो उनके मरुस्थलीय पर्यावरण में उनके लोगों के लिए सबसे लाभदायक होता। उदाहरण के लिए, यद्यपि स्थानीय परंपरा में शोक समारोह करना होता था, जहां वे मृतक का शव दाह करते थे, वे इतने सारे पेड़ों को जलाने को न्यायसंगत नहीं ठहरा सके। देवराम बिश्नोई समुदाय के एक सदस्य ने कहा, मृतक के शव दाह के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, लेकिन जम्बो जी ने कहा कि एक जीवित पेड़ की हत्या करना एक मृतक शरीर से छुटकारा पाने के लिए हास्यास्पद है। हम मृतक को दफनाते हैं और धरती को वापस कर दें जो उसने हमें दिया। उनके सिद्धांतों में जम्बो जी ने लोगों को सभी जीवों के प्रति दयालु होने की याद दिलाई। किसी को मांस नहीं खाना चाहिए, न पशुओं को नुकसान करना चाहिए, बल्कि उनसे ऐसे व्यवहार करें जैसे वे उनकी अपनी संतान हो। इस प्रकार विस्मय पंथ के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। परिस्थिति की मित्रों, आज के हमारे विवेकवान वंशावली में आपके साथ के लिए आपको धन्यवाद। कृपया हमसे अगले सप्ताह फिर जुड़े, जिसमें हम विष्णुयो के पर्यावरणीय सम्मानपूर्ण अभ्यासों को खोजते हैं, जिन्होंने उनकी उत्तरजीविता को 500 वर्षों से अधिक तक भारत के सूखे बंजर मरुस्थल में सुनिश्चित किया है। अब कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर अगले आने वाले गुरु और शिष्यों के बीच के लिए बने रहे। हम आपके ईश्वर की कृपा से भरे एक सुखद और सफल सप्ताह की मंगल कामना करते हैं। थैंक यू इको फ्रेंडली व्यूअर्स फॉर योर कंपनी ऑन टुडेज अवर नोबल लिनेज। प्लीज जॉइन अस अगेन नेक्स्ट वीक एज वी एक्सप्लोर द एनवायरमेंटली रिस्पेक्टफुल प्रैक्टिसेस ऑफ द बिश्नोईस व्हिच हैव एंश्योर्ड देयर सर्वाइवल फॉर ओवर 500 इयर्स इन द ड्राउट रिडन डेजर्ट ऑफ इंडिया। फॉर नाउ प्लीज स्टे ट्यून्ड टू सुप्रीम मास्टर टेलीविजन फॉर बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल्स कमिंग अप नेक्स्ट। We wish you a successful and happy week filled with God's blessings.